हिंदी साहित्य का इतिहास। अतीत के तथ्यों का वर्णन विश्लेषण जो काल क्रमानुसार किया गया हो इतिहास कहलाता है। साहित्य के इतिहास में हम साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में करते हैं, अतः तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन भी आवश्यक होता है। पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य के इतिहास को जनता के चित्तवृत्ति का इतिहास मानते हैं। जनता के चित्तवृत्ति तत्कालीन परिस्थितियों से परिवर्तित होती है, अतः साहित्य का स्वरूप भी इन परिस्थितियों के अनुरूप बदलता है। शुक्ल जी की मान्यता है कि साहित्य का इतिहास कवियों का वृत्त संग्रह न होकर साहित्य की प्रवृत्ति का इतिहास होता है। हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की परंपरा 1833 से प्रारंभ होकर वर्तमान रूप में लिखे गए अनेक इतिहास ग्रंथों तक व्याप्त है। यहाँ हम हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथों को विवरण तालिका के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। लेखक, कृति का नाम, रचनाकाल, विशेषता। 1833 इस्तवार दला लित्रे यूर एंदोई एंदोस्तानी। 1839 ईस्वी फ्रेंच भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ। शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सरोज। 1883 ईस्वी लगभग 1000 कवियों का जीवन वृत्त एवं रचनाएं। जॉर्ज ग्रियर्सन, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। 1888 ईस्वी कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण, काल विभाजन का प्रयास किया गया, पूर्व रचनाओं को आधार स्रोत बनाया। मिश्र बंधु विनोद, 1913 ईस्वी 5000 कवियों को स्थान दिया, काल विभाजन का पहला प्रयास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास, 1929 ईस्वी काल विभाजन, इतिहास दर्शन, नामकरण का स्पष्ट आधार, रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन, नवीन। आचार्य हजार विश्वा द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। नवीन सामग्री एवं नूतन दृष्टि, शुक्ल जी के अनेक निष्कर्षों से असहमत। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, 1938 ईस्वी हिंदी साहित्य, संपादक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। डॉक्टर भगीरथ मिश्र, हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास। डॉक्टर नगेंद्र, रीति काव्य की भूमिका। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी साहित्य का अतीत। प्रभुदयाल मीतल, चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य। परशुराम चतुर्वेदी, उत्तरी भारत के संत परंपरा। डॉक्टर मोतीलाल मीनारिया, राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य। डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। पंडित महेश दत्त शुक्ल, हिंदी काव्य संग्रह। पंडित राम नरेश त्रिपाठी, कविता कौमुदी, दो भाग। बाबू श्याम सुंदरदास, हिंदी भाषा और साहित्य। सूर्यकांत शास्त्री, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। कृपा शंकर शुक्ल, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य चतुर्सेन, हिंदी साहित्य का इतिहास। नागरी पिचरणी सभा काशी, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, 18 खंडों में। उसकी पृष्ठभाग रीतिकाल का संपादन डॉक्टर नगेंद्र ने किया है। डॉक्टर बच्चा सिंह, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। डॉक्टर टिकम सिंह तोमर, हिंदी वीर काव्य। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आचार्य शुक्ल का योगदान। हिंदी साहित्य के इतिहासकार में पंडित रामचंद्र शुक्ल का नाम सर्वोपरि है। उन्होंने सन 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य के इतिहास नामक ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा, जिसे बाद में स्वतंत्र पुस्तक का रूप दिया गया। आचार्य शुक्ल ने साहित्य के इतिहास के प्रति एक निश्चित एवं सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए सिद्धांत स्थापित किया कि इनोटेड का प्रत्येक देश का साहित्य तो वहाँ की जनता के चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। जनता के चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। इनोटेड कमावत। उन्होंने युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्यिक प्रवृत्तियों के विकास की जो बात कही वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने अपने इतिहास में सर्वत्र इसी धारणा के अनुरूप प्रत्येक कालखंड की युगीन परिस्थितियों का समग्र विवेचन करते हुए तत्कालीन काव्य प्रवृत्तियों की चर्चा की है। शुक्ल जी का दूसरा महत्वपूर्ण योगदान काल विभाजन के संबंध में। मिश्र बंधुओं ने तथा ग्रियर्सन ने यद्यपि इस प्रकार के प्रयास किए, परंतु वे अधिक प्रयास सफल नहीं हुए। शुक्ल जी ने मिश्र बंधुओं के काल विभाजन पर टिप्पणी करते हुए लिखा, इनवर्टेड कॉमा, सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वित्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकते। इन्होंने कमापन। उन्होंने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को चार कालों में विभक्त कर नया नामकरण भी दिया। आदिकाल, वीरगाथा काल संबद्ध 1050 से 1375। पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल संवत 1375 से 1700, उत्तर मध्यकाल रीति काल संवत 1700 से 1900, आधुनिक काल यानी गद्य काल संवत 1900 से 1984। उनके इस काल विभाजन का एक सुस्पष्ट आधार भी है। जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। काल की प्रवृत्ति का निर्धारण करने के लिए उन्होंने आदि ग्रंथों प्रसिद्ध ग्रंथों का भी आधार भी ग्रहण किया है। शुक्ल जी का यह काल विभाजन भी सरलता एवं स्पष्टता के कारण अत्यंत लोकप्रिय हुआ और परवर्ती इतिहास लेखकों ने थोड़े बहुत परिवर्तन से इसी को आधार बनाकर अपने काल विभाजन एवं कालों के नामकरण प्रस्तुत किए हैं। शुक्ल जी द्वारा दिए गए वीरगाथा काल नाम पर सबसे अधिक आपत्ति की गई, अन्यथा शेष कालों को ज्यों कहते हैं परवर्ती इतिहासकारों ने प्रयास स्वीकार कर लिया है। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को निर्गुण एवं सगुण धाराओं में विभक्त कर पुनः उन्हें क्रमशः दो दो उप विभागों ज्ञानाश्रय प्रेमाश्रय एवं राम भक्ति कृष्ण भक्ति शाखा में वर्गीकृत किया। रीतिकालीन कवियों के वर्गीकरण में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए रीतिबद्ध रीतिस्थित रीतिमुक्त कवियों को स्थान दिया। रीतिकालीन कवियों के आचार्यत्व पर भी उन्होंने सूक्ष्मता से विचार करते हुए अपने निष्कर्ष दिए हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना शुक्ल जी ने उस समय की थी जब हिंदी में अनुसंधान एवं आलोचना का श्री गणेश ही हुआ था। उस समय तक अनेक विवादास्पद प्रश्न अनसुलझे हुए थे तथा हिंदी की बहुत सारी अप्रामाणिक सामग्री भी प्रामाणिक मानी जाती थी। शुक्ल जी ने अपने व्यापक दृष्टिकोण वैज्ञानिक विवेचन पद्धति एवं सूक्ष्म विश्लेषण पद्धति के बल पर जो निष्कर्ष दिए हैं उन पर आज भी प्रश्न चिन्ह लगाना असंभव है। वस्तुतः शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना करके एक मानदंड प्रस्तुत किया है। उन्होंने जो प्रवृत्ति मूलक इतिहास प्रस्तुत किया है उसमें कवियों के जीवन परिचय को उतना महत्व नहीं दिया गया जितना उनकी रचनाओं के मूल्यांकन को। यही नहीं, उन्होंने कवियों के साहित्यिक महत्व को पहचानने के उपरांत ही उन्हें इतिहास में स्थान दिया, इसलिए यह संभव हो सका कि वे मिश्र बंधुओं के 5000 कवियों की तुलना में केवल 1000 कवियों तक सीमित रह गए। आचार्य शुक्ल नवोन्मेषशालीन प्रतिभा के धनी थे। उन्हें प्रौढ़ विवेचना शक्ति एवं वैज्ञानिक दृष्टि थी, इसीलिए एक ऐसे इतिहास ग्रंथ की रचना कर सके जो उनके क्षेत्र में मील का पत्थर सिद्ध हुआ। आज शुक्ल जी के कहे हुए एक एक वाक्य आधार बनाकर शुद्ध कार्य किए जा रहे हैं और उनकी प्रत्येक पंक्ति का मूल्यांकन करने का प्रयास हो रहा है। परवर्ती इतिहास लेखकों की कृतियों का मूल आधार शुक्ल जी का इतिहास ही बनता रहा है तथा इन कृतियों का मूल्यांकन शुक्ल जी के इतिहास को मानदंड बनाकर किया जाता रहा है। एक इतिहास लेखक के रूप में शुक्ल जी निर्विवाद रूप से सर्वोपरि, किंतु कहीं कहीं उनका आलोचक रूप प्रखर हो जाता है और ऐसे स्थलों पर तटस्थ नहीं रह पाए हैं। उदाहरण के लिए तुलसी के प्रति उनका मोह कबीर के प्रति अन्याय करवा गया है। यह इतिहास 1929 में लिखा गया, तब से लेकर अब तक अनेक शोधकार हो चुके हैं जिनसे प्राप्त निष्कर्ष हमें समाविष्ट होने चाहिए। काल विभाजन और नामकरण। काल विभाजन के कई आधार हो सकते हैं, जैसे कर्ता के आधार पर प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेद युग। प्रवृत्ति के आधार पर भक्ति काल, संत काव्य, सूफी काव्य, रीति काल, छायावाद, प्रगतिवाद। विकासवाद के आधार पर आदिकाल, आधुनिक काल, मध्यकाल। इस संबंध में उल्लेखनीय बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला, काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों को समानता के आधार पर होना चाहिए। दूसरा, कालों का नामकरण यथासंभव मूल चेतन यानी प्रधान प्रवृत्ति को आधार बनाकर करना चाहिए। तीसरा, युगों कालों का सीमांकन मूल प्रवृत्तियों के आरंभ और समापन के अनुसार होना चाहिए। चौथा, काल की मूल प्रवृत्ति का निर्धारण प्रमुख ग्रंथों के आधार पर करना चाहिए। हिंदी के प्रमुख इतिहासकारों द्वारा किए गए काल विभाजन। पहला, गारसा दत्तासी सिंगर ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। दूसरा, ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को 11 अध्यायों में विभक्त किया है। प्रत्येक अध्याय एक कालखंड को व्यक्त करता है। इन्होंने लेखक एवं कवियों का काल क्रम अनुसार वर्गीकरण किया है। इस काल विभाजन में वैज्ञानिकता का अभाव है तथा अध्यायों की संख्या अधिक होने से उसे काल विभाजन मानना उपयुक्त नहीं है। तीसरा, मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। पहला, आरंभिक काल क पूर्वारंभिक काल 700 से 1343 विक्रम संवत। ख उत्तरारंभिक काल 1344 से 1444 विक्रम संवत। दूसरा, माध्यमिक काल क पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रम संवत। ख प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रम संवत। तीसरा, अलंकृत काल क पूर्वालंकृत काल 1661 से 1790 विक्रम संवत। ख उत्तरालंकृत काल 1791 से 1889 विक्रम संवत। परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रम संवत। वर्तमान काल 1926 विक्रम संवत से अब तक। यह काल विभाजन असंगत है क्योंकि इसमें हिंदी को पीछे ले जाकर भ्रंश काल को समाविष्ट कर लिया गया है। कालों के नामकरण एक जैसी पद्धति पर नहीं तथा कालों की संख्या अधिक है। चौथा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। वीरगाथा काल संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत। भक्ति काल संवत 1375 से 1700 से, रीति काल संवत 1719 तक, गद्य काल संवत 1900 से 1984 से। वस्तुतः शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरा नामकरण करते हुए उसका प्रारूप निम्न प्रकार दिया है। आदिकाल वीर गाथा काल 1050 से 1375 विक्रम संवत, पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम संवत, उत्तर मध्यकाल रीति काल 1700 से 1900 विक्रम संवत, आधुनिक काल गद्य काल 1900 से 1984 विक्रम संवत। स्पष्ट है कि लोग जिसे आदिकाल कहते हैं, शुक्ल जी उस काल में वीरता की प्रवृत्ति को प्रधान मानकर उसका नाम वीरगाथा काल रखना चाहते हैं। उसी प्रकार पूर्व मध्य काल को भक्ति काल, उत्तर मध्य काल को रीति काल तथा आधुनिक काल को गद्य काल कहे जाने के पक्ष में। उनके अनुसार वीरगाथा काल में वीरता के, भक्ति काल में भक्ति की, रीति काल में रीति तत्व निरूपण की और आधुनिक काल में गद्य की प्रधानता है। इसलिए प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर इन कालखंडों का नामकरण किया जाना उचित है। शुक्ल जी की काल विभाजन पद्धति के दो आधार हैं, पहला प्रधान प्रवृत्ति, दूसरा ग्रंथों की प्रसिद्धि। जिस कालखंड में एक विशेष ढंग की रचनाएं अधिक मिली उसे एक अलग कालखंड माना गया और रचनाओं की प्रचुरता के आधार पर प्रधान प्रवृत्ति का निर्धारण कर लिया गया। प्रधान प्रवृत्ति के लिए लोक प्रसिद्ध ग्रंथों को ही आधार बनाया गया है। शुक्ल जी ने कि काल विभाजन सर्वाधिक आपत्ति विद्वानों को वीरगाथा काल नाम पर है। इस काल की अधिकांश सामग्री आधारहीन एवं अप्रामाणिक है, अतः उसके आधार पर प्रधान प्रवृत्ति का निर्धारण नहीं हो सकता। कुछ आलोचकों ने इस नाम को अनुचित बताकर इसे आदिकाल कहना उपयुक्त माना है। एक प्रवृत्ति को प्रधानता देकर शेष को गौण मान लेने का दृष्टिकोण भी कुछ लोगों के मत से एकाकी है, जो इतिहास की अधूरी एक पक्षी व्याख्या करता है जिसे वैज्ञानिक नहीं कह सकते। फिर भी यह कहना उचित है कि शुक्ल जी की काल विभाजन पद्धति का आधार संगत एवं पुष्ट है। उनका काल विभाजन सरल एवं सुस्पष्ट है। अधिकतर परवर्ती इतिहासकारों ने इसी का आधार ग्रहण किया है। पांचवा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। संधिकाल 750 विक्रम संवत, 1000 विक्रम संवत। चारण काल 1000 विक्रम संवत से 1350 विक्रम संवत। भक्ति काल 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत। रीति काल 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत और आधुनिक काल 1900 विक्रम संवत से अब तक। संधिकाल में उन्होंने अभ्रंश की रचनाएं समाविष्ट की हैं। चारण काल और शुक्ल जी की वीरगाथा काल में कोई मौलिक अंतर नहीं है। वीरगाथाओं रचयिता चारण कहलाते थे। शुक्ल जी ने नामकरण रचना की प्रवृत्ति के आधार पर किया, जबकि राम कुमार वर्मा ने रचनाकार के आधार पर किया। छठा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन। प्रारंभिक काल 1184 से 1350 ईस्वी। दूसरा, मध्यकाल में पहला पूर्व मध्यकाल 1350 से 1500 ईस्वी। उत्तर मध्यकाल 1500 से 1857 ईस्वी। आधुनिक काल 1857 से 1965 ईस्वी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का यह भी मत है कि हिंदी के प्रारंभिक एवं मध्यकाल में तीन प्रकार का काव्य मिलता है, धर्माश्रित काव्य, राजाश्रित काव्य और लोकाश्रित काव्य। विभिन्न कालखंडों के नामकरण, पहला आदिकाल वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बीच भूपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यान, आरंभिक काल मिश्र बंधु, प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। दूसरा, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल। तीसरा, उत्तर मध्यकाल रीति काल, अलंकृत काल, श्रृंगार काल, कलाकाल। चौथा, आधुनिक काल गद्य काल, वर्तमान काल। स्पष्ट है कि प्रथम कालखंड के नाम प्रण में अधिक विवाद है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में जो नाम सर्वाधिक प्रचलित है वे इस प्रकार हैं। पहला, आदिकाल 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। भक्ति काल 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। रीति काल 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। आधुनिक काल 1850 ईस्वी से अब तक।